ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर उनका संबोधन।
कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई।
श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद गांधी जयंती पर आज युवा साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का वे हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि उनका आग्रह है कि सभी अपने आसपास स्वच्छता से जुड़ी मुहिम का हिस्सा जरूर बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश सहित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में विपक्ष के नेता ने विजय घाट स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में 79,150 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण करेंगे और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के तीसरे अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में लगभग 70% मतदान दर्ज हुआ है। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 76% मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तीन चरणों में हुआ सफल मतदान इस क्षेत्र में नई सुबह को दर्शाता है। बिहार में कोसी नदी में आई भीषण बाढ़ से राज्य के 16 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 48 घंटों में राज्य के सीमांचल और पूर्वी हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। ईरान ने कल रात इसराइल पर सीधा हमला करके करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान के हमले से लोग सुरक्षित स्थानों में चले गए हैं और क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने दावा किया है कि ये हमले हाल ही में हिजबुल्ला और हमास के वरिष्ठ सदस्यों की हत्या का बदला लेने के रूप में किए गए हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि कल रात के हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है और इसराइल के हवाई क्षेत्र में नए हमलों का कोई संकेत नहीं मिला है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है और साथ ही ईरान को इस हमले के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 228 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि 25 लोग लापता हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 13,071 लोगों को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को भोजन सहित राहत सामग्री वितरित की जा रही है और घायलों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि बाधित राजमार्ग पर परिचालन जल्द ही शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।